हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 19 के आगे। यथा दीपो निवाथस्तो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में उसी प्रकार अविचलित रहता है जिस प्रकार वायु रहित स्थान में एक दीपक रहता है। तो ये धारण आप समझ सकते हैं, इसका मतलब ये है कि एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का चित्त कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करने के अलावा और कहीं नहीं जाता। ये कृष्ण भावना भावित होने का अर्थ है, बहुत सीधा अर्थ। चित्त हमेशा कृष्ण की तरफ बहे, जैसे हमने उदाहरण दिया था पहले, जैसे गंगा जी सागर की तरफ बहती हैं। और ये कैसे होता है? जब हमारा मन वश में होता है। और हमारा मन वश में कब होता है? जब हमारी इंद्रियां, या हम मन को वश में कैसे करते हैं? जब हम अपनी इंद्रियों को लगातार भगवान की सेवा में हम लगाए रखते हैं, और इंद्रियां क्योंकि मन के द्वारा संचालित होती हैं, तो इस प्रकार से मन स्वभावतः अपने आप ही भगवान में लग जाता है। तो जब मन में केवल भगवान की सेवा का ही संकल्प उठे, तो ये समझना चाहिए कि हमारा मन वश में हो गया। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखम आत्यंतिकम यद्दत् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्त्वतः यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितौ न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्याद् दुख संयोगम वियोगम योग संगितम। तो भगवान यहाँ पे उस समाधि की स्थिति को बता रहे हैं, एक परम योग की स्थिति को बता रहे हैं, जिस स्थिति को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति किसी भी भौतिक परिस्थिति से विचलित नहीं होता। सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ आप बहुत अनुभव कर सकते हैं। जब हम लोग जप करते हैं तो मन में कितने सारे क्रियाओं को करने की या तो स्मृति आती है या स्पृहा आती है। हमको ये याद आता है कि हमने क्या किया, या हम प्लानिंग करते रहते हैं कि हम ये करेंगे, तो ये सारी इच्छाएं, बहुत सारी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। और कैसे होती हैं? सिद्धि की अवस्था में जब बार बार भगवान की सेवा करते रहते हैं, तो भगवान की सेवा के अलावा, भगवान के चिंतन के अलावा और कुछ भी चित्त में नहीं आता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। इस बात को भागवत में भी बताया गया है, दृष्ट एवात्मनीश्वरे। मन को एक दर्पण की तरह कहा जाता है। दर्पण अगर गंदा हो तो हम अपने चेहरे को, अपने स्वरूप को नहीं देख पाते हैं। इंटरेस्टिंग है कि हम दर्पण के बिना अपने चेहरे को नहीं देख सकते हैं इस समय, इस जो शरीर में हमारा दिया गया है। और दर्पण जब साफ होगा तभी चेहरा ठीक से दिखाई पड़ेगा। तो उसी रूप प्रकार से जब मन और हमारी चेतना, जब हमारी चेतना, हमारा मन शुद्ध हो जाएगा तभी हम अपने आप को देख पाएंगे कि हम हैं कौन। हम कॉन्शियस हो पाएंगे कि हम शरीर नहीं है और हम हैं कौन, वास्तविक रूप से इस बात को देख पाएंगे। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। आत्यंतिक सुख का अर्थ क्या है? जो हम कार्य कर रहे हैं अभी, वो हमारे इंद्रियों को दूषित करते हैं और हम अपने दूषित इंद्रियों से कार्य करते हैं तो वो इंद्रियां और दूषित हो जाती हैं। जब यही इंद्रियां भगवान की सेवा में लगती हैं तो हमारी चेतना शुद्ध होती चली जाती है। इंद्रियों को दूषण होने का मतलब है कि चेतना का दूषण। जो व्यक्ति शुद्ध नाम कर रहे हैं उनकी जीभ भी उसी उसी तरह से दिखाई पड़ती है जैसे अन्य लोगों की, लेकिन उनका अनुभव परिवर्तित हो जाता है क्योंकि उनकी चेतना भोगों की वासनाओं से पूरी तरह से मुक्त हो जाती है। श्री रूप गोस्वामी समझाते हैं, जब हृदय में भुक्ति और मुक्ति की वांछा नहीं रहती है तभी व्यक्ति भक्ति के सुख का अनुभव कर सकता है। यानी भोगों की वांछा और इस जगत से मुक्त होने की वांछा, दुखों से निवृत्त होने की वांछा, ये जब समाप्त हो जाती है तभी व्यक्ति भक्ति का सुख अनुभव करता है। या जितनी मात्रा में इसका निर्मूलन हो गया है उतनी मात्रा में हम भक्ति के सुख का अनुभव करते हैं। तो ये स्थिति हो जाती है जिसमें आप दोनों ही चीज देख रहे हैं, एक अपनी शुद्ध इंद्रियों से वो सीधे ही दिव्य सुख अनुभव करता है ऐसा भक्त, ऐसा व्यक्ति। दूसरा आप देख रहे हैं कि मुक्ति की अभिलाषा भी समाप्त हो गई है क्योंकि बड़ी से बड़ी कठिनाई से भी विचलित नहीं होता। जब हमारे जीवन में कठिनाई आती है तो हम उससे मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो भगवान की भक्ति में पूरी तरह से सिद्ध हो गया है, भगवान की भक्ति के सुख को प्राप्त कर लिया उसने, तो वो जगत की कठिनाइयों से परेशान नहीं होगा। तात्पर्य, योगाभ्यास से मनुष्य भौतिक धारणाओं से क्रमशः विरक्त हो जाता है। भौतिक धारणा का अर्थ है कि मैं शरीर हूं और शरीर से संबंधित वस्तुएं मेरी हैं, और ये जो लोग शरीर से संबंधित हैं वो लोग मेरे हैं। यह योग का प्रमुख लक्षण है और इसी कारण से लोग डरते हैं जब हम लोग भक्तों का संग करते हैं, तो क्योंकि लोग अपनी धारणाओं से चिपके हुए आसक्त हैं, इसलिए जब वो देखते हैं कि कोई व्यक्ति भक्तों का संग कर रहा है तो वो नोटिस करते हैं कि उसकी धारणा चेंज हो रही है, और इसलिए परिवार वाले बहुत घबरा जाते हैं। लेकिन ये लक्षण अच्छा है अगर हमारे हृदय में विरक्ति हो रही है तो। इसके बाद वह समाधि में स्थित हो जाता है, जिसका अर्थ यह होता है कि दिव्य मन तथा बुद्धि के द्वारा योगी अपने आप को परमात्मा समझने का भ्रम न करके परमात्मा की अनुभूति करता है। बहुत सुंदर है कि जो योगी शुद्ध नहीं है वो सोच सकता है कि मैं भगवान हूँ या परमात्मा हूँ, लेकिन जैसे इंद्रियां शुद्ध होती हैं तो अपने में और परमात्मा के अंत में अंतर को देखता है और तभी सुख की अनुभूति कर पाएगा। योगाभ्यास बहुत कुछ पतंजलि की पद्धति पर आधारित है। कुछ अप्रमाणिक भाष्यकार जीवात्मा तथा परमात्मा में अभेद स्थापित करने का प्रयास करते हैं और अद्वैतवादी इसे ही मुक्ति मानते हैं, किंतु वे पतंजलि की योग पद्धति के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। यानी कुछ लोग कहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा में लीन हो जाती है और फिर वही उसी को मुक्ति कहते हैं, ये अद्वैतवाद कहलाता है, लेकिन ये पतंजलि का दर्शन नहीं है। पतंजलि पद्धति में दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है, किंतु अद्वैतवाद वादी इस दिव्य आनंद को स्वीकार नहीं करते क्योंकि उन्हें भ्रम है कि इससे कहीं उनके अद्वैतवाद में बाधा न उपस्थित हो जाए। क्यों बाधा आएगी? क्योंकि आनंद की बात करेंगे तो आनंद का अनुभव करने वाला एक व्यक्ति भी होगा, और एक व्यक्ति होगा तो उसका अस्तित्व नष्ट नहीं हो सकता, जबकि अद्वैतवाद में हम अपना अस्तित्व ही नष्ट कर देते हैं, उनके हिसाब से होता नहीं है लेकिन उनके हिसाब से, और हम ब्रह्म में या परमात्मा में जाकर मिल जाते हैं। तो ये इसी कारण से वो दिव्य आनंद की को स्वीकार नहीं करते। अद्वैतवादी ज्ञान तथा ज्ञाता के द्वैत को नहीं मानते, यानी कि वो यही बात मैं समझा रहा था कि वो कहते हैं जब सिद्ध हो जाता है व्यक्ति तो आनंद का अनुभव करना ही भी एक प्रकार का ज्ञान है कि हाँ मुझे अनुभव हो रहा है, अनुभव है, तो वो अनुभव करने वाला व्यक्ति है, उस अनुभव से वो अलग है। तो इस चीज को खंडन करने के लिए वो कहते नहीं, बस केवल ज्ञान रह जाएगा, जो जानने वाला ज्ञाता है वो खत्म हो जाता है। किंतु इस श्लोक में दिव्य इंद्रियों द्वारा अनुभूत दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है। इसका मतलब है कि सिद्ध अवस्था में भी व्यक्ति जीवात्मा एक व्यक्ति रहता है। इसकी पुष्टि योग पद्धति के विख्यात व्याख्याता पतंजलि मुनि ने भी की है। योग सूत्र में महर्षि कहते हैं, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्त शक्ति रीति। यह चित्त शक्ति या अंतरंग शक्ति दिव्य है। पुरुषार्थ का तात्पर्य धर्म, अर्थ, काम तथा अंत में परब्रह्म से तादात्म्य या मोक्ष है। मतलब ये जीवन के लक्ष्य होते हैं सामान्य। अद्वैतवादी परब्रह्म से इस तादात्म्य को कैवल्यम कहते हैं, किंतु पतंजलि के अनुसार कैवल्यम यह वह अंतरंग या दिव्य शक्ति है जिससे जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति से अवगत होता है। यानी कि अद्वैतवादी कहते हैं कि जीवात्मा ये साक्षात्कार कर लेती कि वही ब्रह्म है और अपना अपने अस्तित्व को मिटा लेती है, लेकिन पतंजलि के अनुसार जीवात्मा दिव्य शक्ति या अंतरंग शक्ति के संपर्क में आकर के अपनी स्वाभाविक स्थिति परमात्मा के अंश के रूप में अपना अनुभव करती है और अपने इंद्रियों के द्वारा दिव्य आनंद की अनुभूति करती है। भगवान चैतन्य के शब्दों में यह अवस्था चेतो दर्पण मार्जनम अर्थात मन रूपी मलिन दर्पण का मार्जन शुद्धि है। यह मार्जन वास्तव में मुक्ति है। मुक्ति यह भव महादावाग्नि निर्वापणम है। प्रारंभिक निर्माण सिद्धांत भी इस नियम के समान है। भागवत में इसे स्वरूपेणा व्यवस्थिति कहा गया है। भगवद गीता के श्लोक में भी इसी की पुष्टि हुई है। यानी इसका अर्थ क्या है, हमारा जब हृदय शुद्ध हो जाता है तो हम अपने हृदय को अपने चेतना के द्वारा अनुभव करते हैं, शुद्ध चेतना के द्वारा, कि हम ये शरीर नहीं है। और ये भी अनुभव होता है कि हमारा सच्चा स्वरूप क्या है। जब हमारा सच्चा स्वरूप क्लियर हो जाता है तो व्यक्ति के अंदर ये भय सब खत्म हो जाता है जो इस जगत में हमको होता है। जैसे स्वप्न में हम अपने सूक्ष्म शरीर से पहचान कर लेते हैं तो स्वप्न की अवस्थाओं को देख करके हम घबराते हैं, कोई हमको मार रहा है, कोई काट रहा है। लेकिन जैसे हम जग जाते हैं तो सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं अपने आप। ऐसे ही जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है तब हमको अनुभूति भी होती है कि हम आत्मा हैं, भगवान के अंश हैं, और हमारा इस शरीर और शरीर से संबंधित वस्तुओं की प्रॉब्लम से कोई सरोकार नहीं है। और साथ ही साथ व्यक्ति भगवान से अपने संबंध के दिव्य आनंद की अनुभूति करता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। निर्वाण के बाद आध्यात्मिक कार्यकलापों की यह की या भगवत भक्ति की अभिव्यक्ति होती है, जिसे कृष्ण भावनामृत कहते हैं। यानी कि जब व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेता है, पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, तब वो भगवान की भक्ति शुद्ध भक्ति कर सकता है, प्रकट होती है उसमें शुद्ध भक्ति। भागवत के शब्दों में स्वरूपेण व्यवस्थिति, जीवात्मा का वास्तविक जीवन यही है। भौतिक दूषण से आध्यात्मिक जीवन के कलमश युक्त होने की अवस्था माया है। यानी कि व्यक्ति अपने हम अपने स्वरूप को भूले हुए कि हम कौन हैं, हम भगवान के अंश हैं और ईसा हम भगवान के धाम के हमारा उनका हमारा धाम रहने का घर जो है वो भगवान का धाम है। ये सब बातें हम पूरी तरह से भूले हुए हैं और अपनी पहचान इस जगत की वस्तुओं से किए हुए हैं। ये माया है, ये हमारी दूषित अवस्था है। इस भौतिक दूषण से मुक्ति का अभिप्राय जीवात्मा की मूल दिव्य स्थिति का विनाश नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी तो हमारा अस्तित्व मिट जाएगा, हमारा व्यक्तित्व मिट जाएगा, ऐसा नहीं है। पतंजलि भी इसकी पुष्टि इन शब्दों से करते हैं। कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वाश्चिक चित शक्ति रीति, यह चित शक्ति या दिव्य आनंद की वास्तविक जीवन है। इसका अनुमोदन विधान सूत्र में इस प्रकार हुआ है, आनंदमयोभ्यासात। यह चित शक्ति ही योग का परम लक्ष्य है और भक्ति योग द्वारा इसे सरलता से प्राप्त किया जाता है। भक्ति योग का विस्तृत विवरण सातवें अध्याय में किया जाएगा। ये भक्ति योग में सरल क्यों है, क्योंकि भक्ति योग में हम सीधे चित शक्ति के संपर्क में आते हैं। जैसे आप देखिए भगवद गीता को पढ़ना क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि भगवद गीता चित शक्ति का प्रकटीकरण है। भगवान के विग्रह को देखना अच्छा लगता है, भगवान का नाम उच्चारण करना अच्छा लगता है, क्योंकि ये सब चित शक्ति का प्रकटीकरण है, प्रस्तुतिकरण है। और हम पहले दिन से ही भक्ति के पहले दिन से ही चित शक्ति के संपर्क में आते हैं। क्या प्रमाण है, भगवान गीता में बोलते हैं जो लोग मेरे शरण में आए हुए मेरे दैवीं प्रकृतिम आश्रिता महात्मानस्तु माम पार्था दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। जो महात्मा गण है वो लोग भगवान की दैवी प्रकृति के आश्रय में रहते हैं। और उसका लक्षण क्या है, अनन्य भाव से वो भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हैं और किसी के शरण में नहीं जाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि शुरुआत से ही जो महात्मा लोग हैं, भक्त लोग हैं, वो भगवान की अंतरंग शक्ति चित शक्ति के संपर्क में रहते हैं। बस उनके हृदय की जो अविद्या है वो इसी शक्ति से धीरे 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 करके शुद्ध होता चले जाता है उनका हृदय, और फिर बाद में उसका वो अनुभव करने लगते हैं। जिस प्रकार से मलेरिया का जॉन्डिस का जो डिजीज होता है, पीलिया इसको होता है, वो पहले दिन से ही रसगुल्ला खाना चालू कर देता है। बस जब बीमारी ठीक हो जाती है तो स्वाद वापस आ जाता है, क्रिया बस वही रहती है। तो यानी भक्ति में साधन और साध्य एक ही है। इस अध्याय में वर्णित योग पद्धति के अनुसार समाधियां दो प्रकार की होती हैं, संप्रज्ञात तथा असंप्रज्ञात समाधियां। जब मनुष्य विभिन्न दार्शनिक शोधों के द्वारा दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है तो यह कहा जाता है कि उसे संप्रज्ञात समाधि प्राप्त हुई है। असंप्रज्ञात समाधि में संसारी आनंद से कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि इसमें मनुष्य इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के सुखों से परे हो जाता है। तो यानी कि दार्शनिक चिंतन के द्वारा कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ये जगत असार है, इस प्रकार के चिंतन के द्वारा व्यक्ति जब दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है तो संप्रज्ञात समाधि होती है। प्रभुपाद यहाँ टेक्निकल टर्म बता रहे हैं। और असंप्रज्ञात समाधि में व्यक्ति को इस जगत के से कोई सुख ही प्राप्त नहीं होता है, इतना ही समझ पा रहा हूं मैं यहाँ पे। एक बार इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेने पर योगी कभी उससे डिगता नहीं। जब तक योगी इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह असफल रहता है। आजकल के तथा कथित योगाभ्यास में विभिन्न इंद्रिय सुख सम्मिलित हैं जो योग के सर्वथा विपरीत हैं। तो पॉइंट प्रभुपाद यहां बताना चाहते हैं कि दोनों ही स्थिति में, चाहे वो संप्रज्ञात समाधि है या असंप्रज्ञात समाधि, दोनों ही में व्यक्ति इंद्रिय सुख में, भोगों में उनसे विरत हो जाता है, उनसे बिल्कुल अलग हो जाता है। तो प्रभुपाद ये बता रहे हैं कैसे आजकल के लोग जो योग के प्रचारक करते हैं, योग का प्रचार करते हैं, वो कहते हैं कि इसको करने से आपका मैथुन जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका भोग की शक्ति बढ़ जाएगी। तो ये जो है ये बिल्कुल गलत है और इसका, इस प्रकार का योग का अभ्यास करने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। योगी होकर यदि कोई मैथुन तथा मादक द्रव्य सेवन में अनुरक्त होता है तो यह उपहासजनक है। यहाँ तक कि योगी योग की सिद्धियों के प्रति आकृष्ट रहते हैं, वे भी योग में आरूढ़ नहीं कहे जा सकते। यदि योगी जन योग की आनुषंगिक वस्तुओं के प्रति आकृष्ट हैं तो उन्हें सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ नहीं माना कहा जा सकता, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है। अतः जो व्यक्ति आसनों के प्रदर्शन या सिद्धियों के चक्कर में रहते हैं उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार से योग का मुख्य उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। यानी कि योग व्यक्ति जब स्पेशली अष्टांग योग करता है तो बहुत सारी सिद्धियां उसको मिलने लगती हैं, लेकिन वो सिद्धियां उसका लक्ष्य नहीं है, क्योंकि उन सिद्धियों के द्वारा भी वो अपने आप को भगवान मानने लगता है। बहुत सारे लोग अपने को भगवान कहते हैं कुछ सिद्धियां प्राप्त कर लेने के बाद, लेकिन हमारा यही हमारी बीमारी है कि हम भगवान बनना चाहते हैं। तो भगवान की जो ये योग पद्धति के द्वारा व्यक्ति को अपना स्वरूप मालूम होना चाहिए कि वो भगवान का अंश है, तब उसको सिद्ध हुआ माना जाएगा और तभी वो इंद्रिय सुखों के परे जा कर के भगवान की सेवा करने का सुख प्राप्त कर पाएगा, भगवान की सेवा का जो दिव्य आनंद है उसको प्राप्त कर पाएगा। इस युग में योग की सर्वोत्तम पद्धति कृष्ण भावनामृत है, जो निराशा उत्पन्न करने वाली नहीं है। निराशा उत्पन्न करने वाली क्यों है? क्योंकि जो जिस भगवान ने जिस पद्धति को बताया है वो करना हम सबके लिए बहुत मुश्किल है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने धर्म में इतना सुखी रहता है कि उसे किसी अन्य सुख की आकांक्षा नहीं रह जाती। इस दंभ प्रधान युग में हट योग, ध्यान योग तथा ज्ञान योग के अभ्यास करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, किंतु कर्म योग या भक्ति योग के पालन में ऐसी समस्याएं सामने नहीं आती। और ये चर्चा हमने पहले भी करी है, क्यों नहीं आती हैं? क्योंकि भक्ति योग में जो क्रियाएं हम कर रहे हैं सामान्य रूप से, वह बस खाली उन क्रियाओं को भगवान की तरफ मोड़ देना है। जैसे अभी मैं बोलूं कि आप सब लोग जहां पे आप इस क्लास लेक्चर को सुन रहे हैं तो आलती पालती मार कर बैठ करके एकदम ध्यान करी निराकार ब्रह्म पे, तो बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए भगवद्गीता पे कुछ बोलना और आपके लिए भगवद्गीता पे कुछ सुनना ये बहुत सहज है, क्योंकि दिन भर हम सुनते और बोलते रहते हैं। लेकिन ये सारी क्रियाएं दिव्य हैं, क्योंकि ये भगवान के संबंध में, और इससे हमारे हृदय का मैल अपने आप साफ हो जाता है। जब तक यह शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताओं, आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन को पूरा करना होता है। किंतु जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग में अथवा कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करता। बहुत सुंदर बात है, यानी कि नियम में रहते हैं, ना तो बहुत कम खाते हैं तब भी इंद्रियां बहुत उत्तेजित हो जाएंगी, बहुत कम सोते हैं, और ना बहुत अधिक खाते हैं बहुत अधिक सोते हैं, नियम से रहते ताकि शरीर ठीक से चले और भगवान कृष्ण की सेवा कर सके। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। प्रत्युत वह घाटे के सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करके जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करता है और कृष्ण भावनामृत में दिव्य सुख भोगता है। अर्थात ये शरीर घाटे का सौदा है, ये शरीर कष्टमय है। अब हमारे पूर्वगत गलत कर्मों की वजह से हमें मिल गया एक अलग बात है, लेकिन हमको और ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिसके द्वारा हमको ये शरीर और प्राप्त और हमको भोगों में लेके जाए। तो इसलिए कृष्ण भावनामृत में दिव्य सुख भोगने का अर्थ है कि अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करता है और भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त करता है, और जब भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त कर लेता है तो वही भक्ति की क्रियाएं उसको अत्यंत असीमित सुख देती हैं। वह दुर्घटनाओं, रोगों, अभावों और यहां तक कि अपने प्रियजनों की मृत्यु जैसी आपातकालीन घटनाओं के प्रति भी निरपेक्ष रहता है, किंतु कृष्ण भावनामृत या भक्ति योग संबंधी अपने कर्मों को पूरा करने में वह सदैव सचेष्ट रहता है। तो ये स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट भगवान बता रहे हैं कि बहुत बड़ी कठिनाई से भी विचलित नहीं होता है, ये धीर हो जाता है व्यक्ति। जब व्यक्ति भक्ति करता रहता है, भगवद्गीता को सुनता रहता है, तो धीरे धीरे उसको समझ में आने लगता है कि जगत अशाश्वत है और इस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना या दुर्घटना हो जाना ये तो अवश्यम भावी है, नहीं हुआ तो ये आश्चर्य की बात है। मैं हमेशा इस बात को सोचता हूं कि जगत में मर्त्य लोक बोला जाता है, यानी कि मरना यहाँ पे सत्य है, हम एक दिन और जी लिए आश्चर्य की बात है। और इतने सारे लोग यहाँ पे इधर से उधर जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन लोग मृत्यु के बारे में नहीं सोच रहे, जबकि हम मर्त्य लोक में ही रह रहे हैं, मरने जहाँ पे लोग मरते ही हैं। खैर, भक्त इस बात के प्रति सचेष्ट रहता है और अपना पूरा समय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगाने का प्रयास करता है। दुर्घटनाएं उसे कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर पाती, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, आगाम पायनो नित्यस्ताम तितिशक्स्तु भारत। वह इन प्रासंगिक घटनाओं को सहता है क्योंकि वह भली बातें जानता है कि ये घटनाएं ऐसे ही आती जाती रहती हैं और इनसे उसके कर्तव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार वह योगाभ्यास में परम सिद्धि प्राप्त करता है। यानी कि हमें अपनी साधना भक्ति दृढ़ता से करती रहनी चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव आएगा और उन उतार चढ़ावों का वस्तुतः हमारे स्वरूप से कोई संबंध नहीं है। अगर हम गरीब हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान को हम अप्रिय हो जाएंगे। अगर हम अमीर हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान को अप्रिय हो जाएंगे। भक्ति जो है वो अहेतुकी है, अप्रतिहता है, किसी भी भौतिक परिस्थिति पे भक्ति जो है वो डिपेंड नहीं करती। भक्ति बस केवल एसेंशियल यही है कि भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा से जो भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य होते हैं हम उसमें संलग्न हों, और इसके लिए कोई भी भौतिक परिस्थिति हमको रोक नहीं सकती है। तो इस कारण से जो भौतिक कठिनाइयाँ आती हैं, दुख सुख आता है, उसको सह करके भक्त भक्ति करने में अपने आप को संलग्न रखते हैं, और इसके द्वारा आप जैसे जैसे उनका हृदय शुद्ध हो जाएगा, भगवान की भक्ति में उनको सुख भी प्राप्त होगा और वो योग की सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। हरे कृष्णा।